8
दिवस
आज हमारी यात्रा पहले राहुल गई, राहुल ने ब्रह्मांड का गोकुल से दाऊ जी और दाऊ जी से और थोड़ा सा आगे
युगोस्ना
गए और फिर वहाँ से यहाँ पर 4:30 के करीब में लौट
5 बजे 5 बजे
और यात्रा लेकिन टुडे राम रावण रावण टू ब्रह्मांड दास महाबल गोकुल देन दाऊ जी एंड देन पहले हम रावल में गए, राधिका जी का महाभाव संस्था, राधिका जी की जन्मस्थली है, कृष्ण गोकुल में जन्मे और राधिका जी रावल में मानु के घर में जन्मे। रानू बाबा का घाट भी है यमुना, आज तो कुछ पानी था वहाँ थोड़ा सा, वहीं पर कमल सप्तल कमल के ऊपर अजोनी गया राधा जी
प्रकट हुए
और विश्वधानु महाराज ने कति पिता के गोद में दिया और फिर वहां पर पनी नारायण जी घूमते काम से गोकुल से कृष्ण का जन्म और जन्मोत्सव देख करके रावण में गए और राधा जी का दर्शन किया, इस प्रकार से वो भक्त लोग वहां पर बोले बोला ना तो बोले
हाँ बोले
हो सकता है कि किसी कल्प में बरसाना में भी
जन्म हुआ है,
जन्म हुआ किंतु इस कल्प में तो यही और प्रत्येक कल्पों में गोकुल में ही जन्म कृष्ण का होता है, ये भी विचार ये करते हैं प्रत्येक
गोकुल में
ही जन्म नंदला में उनके पूर्ववासी लोग रहते थे किंतु कृष्ण का जन्म कभी भी किसी समय में नंदगांव में नहीं सुना जाता।
आपने बताया कि विश्वधानु बाबा की नंदगांव में पास पास रहते हैं, कृष्ण का जन्म और कल्प में गोकुल में हुआ करता है, तो विश्वभानु नंदिनी का जन्म बरसाने में कैसे हुआ, तो कल्प में रहे
उस समय का इसलिए संगत ऐसा ही रखता है कि गोकुल के पास अभाव नहीं का समय जी का जन्म हो और कल्प भी हरी कथा सुहावा कोई भी यदि है तो वो भी सामंजस्य का किंतु राजा जी का जन्मोत्सव नहीं। ब्रह्मांड घाट में गए और वहां की कथाएं आप लोगों ने सुना किस प्रकार से नंद बाबा कृष्ण बलदेव को लेकर के मां स्नान करते थे, किस प्रकार से मैया और बाप गोरे गोरे और तू काला कैसे हो गया, कृष्ण रोने लगे और मैया से उगाना दिया और रोने लगे बोली भी नहीं आई, तब उन्होंने नारायण की शपथ खा करके बदलाया नहीं तुम हमारे मट्टी खाई कृष्ण ने सखाओं ने मैया के पास में लालित कर मट्टी खाया है। यशोदा मैया क्रोध करके आई मुख खोलो और अपने हाथों से मुख खोला और फिर भी ब्रह्मांड उसी के अंदर में देखा अपने को भी उसके अंदर में बैठा फिर तो सोना लग गया नजर लग गई क्या हुआ और गाय उसकी काली गाय के दूध से और गोबर और मूत्र से उसका अभिषेक करा कर भी गायों को साथ ब्रह्मांड घाट के बाद में कृष्ण ने जमलातुन का यहाँ उद्धार किया था वो जमलातुन सज्जन लीला स्थली वहां पर आप लोग आए और वहां से काफी आजकल कुछ रास्ता इधर का कर दिया नहीं तो नंद को वही था समुद्र को या नंद को ऊपर नहीं उल्टी से बात नहीं क्या जमला में सज्जन है उसी के पास में है वहां पर आए और वहां से भी नंद बाबा के चौरासी खंभे में नंद बाबा के समय में चौरासी खंभा था बहुत विशाल और वहीं पर काशी में मुखानंद इत्यादि जी का घर है काशी में रोहिणी नंदन बलदेव और देवकी नहीं रोहिणी नहीं है और प्रतिदेव जी का विग्रह है वहाँ अर्थात वहीं पर रात में बसदेव जी ले आए यमुना जी की यशोदा जी की गोद में चला करके कन्या को ले गए कृष्ण जी का जन्म स्थल और योग माया का स्थान है वहाँ इंडिया का
वहाँ भी बंद है
उनके
अभी बंद था बंद है बाबा जी के
बंद था
हम लोग को बोले बोले बाबा जी
बंद ছিল না
আমাদের বলেছি আমরা
যে অনেক লোক গিয়েছিল তো ফিরে চলে আসলো
ওর স্থান
বলুন বলুন
নন্দ মন্দির गोपेश्वर महादेव गोपेश्वर महादेव वहां पर भी है लोकमाया का जन्म स्थान बाल गोकुलेश्वर रोहिणी मंदिर उतना पथक स्थली सखटापुर मीना पथक पदक स्थली जन्म संस्कार यहाँ पर गर्ग जी ने किया था वो गोकुल कहते हैं या गौशाला वहाँ है रास्ते में पड़ती है नामकरण स्थान अग्नि संस्कार सब उतना को अग्नि इत्यादि दी गई थी प्रकट व्यंजन स्थान घुटनों पर जहाँ पर कृष्ण चलते थे वो स्थान ब्रह्मांड घाट यशोदा जी का आंगन नवनी चोरी स्थल दामोदर लीला स्थल सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली मदन मोहन जी का स्थान जब भी वहां पर रहते थे जिसको अद्वैताचार्य जी वहां से ले आए मथुरा में ले गए फिर वहां से मदन मोहन वृंदावन में आए फिर करौली चले रमन रेति पास में है जहाँ पर श्री कृष्ण खेलते थे रमन रेति में वो उपानंद आदि के बाद स्थली कृष्ण का ज्ञात कर्म जहाँ पर हुआ वो बैठक बैठा और वृंदावन से आने का पथ तो करौली और भी रास्ते में स्थली है ब्रह्मांड घाट में चिंताहरण घाट भी गए होंगे, मंदिर की परिक्रमा में उधर में चिंताहरण घाट है, वो शंकर जी का है। इस तरह से वहाँ दर्शन करके दाऊ जी में गए। दाऊ जी कृष्ण का जन्मस्थल ही नहीं है, जन्म तो महाबल में ही कृष्ण के साथ में है, जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ उनका भी जन्म हुआ। असल में वो गोचारण भूमि है, गोचारण भूमि वहाँ है, और यमुना के उस पार में जितने स्थान है बलदेव जी वहाँ के अधिष्ठात्री देवता है, भद्रवन बलदेव जी के नाम से, गोकुल इत्यादि के भी अधिष्ठात्री देवता है, लोक वन के सबके बलदेव प्रभु।
भद्रवन भांडीरवन रेलवन महावन लोक वन पांच वन,
भांडीरवन नहीं
तो पांच वन उधर है,
हाँ है ये तो अब आगे आया है, भांडीरवन को उधर में ले लेते हैं, वो राधा जी का है, राधा जी की
प्रधानता कृष्ण की प्रधानता में आता है, उपवन में आता है भांडीरवन, बेलवन लोहवन है, बेलवन भद्रवन माडवन और लोहवन महावन पांच वन उधर में बलदेव जी उनके अधिष्ठात्री देवता है, भांडीरवन तो उसमें गिनती नहीं करते हैं, अलग से गिना जाता है। राधा कृष्ण की लीला होती है, सिंगारस का सिंगारस का
ये सब नहीं है, दाऊ जी को भी बलराम कहते
हैं, मतलब दाऊ जी जो स्थान है बलदेव जी स्थान बताया जाता है,
जाया करते थे कृष्ण के साथ
मिला,
और उनकी लीलाएं कुछ विशेष होंगी, जो बद्रनाथ जी ने वहाँ पर दाऊ जी का किया था, शिव सागर में वो उठा हुआ मिला था, उसी को पीछे से मंदिर में रख करके और उसकी पूजा करते, वहाँ पर मंदिर में दाऊ जी हैं किंतु उनके पीछे में रोहिणी रेवती है, क्योंकि ब्रज लीला में उनका विवाह इत्यादि नहीं है, इसलिए पीछे की तरफ कर रखते हैं, किंतु वो लोग जानते नहीं है ये क्यों पीछे में रखा है, यदि उनको सामने रखा जाएगा तो रसा भाग हो जाएगा, इसलिए उनको पीछे रखा वो ठीक है। तो इस तरह से दाऊ जी का दर्शन करके और आप लोग बताए चारों वैष्णव संप्रदाय और उनकी शाखाओं के आश्रित जन निम्बार्कर निम्बादित्य विष्णु स्वामी रामानु मध्वाचार्य इत्यादि और उनके अनुगत जन ब्रज में बास करते हैं किंतु संत का बात नहीं करते, वे संत का वहां नहीं बात करते, ब्रज से ब्रज बात करने पर भी ब्रज के भाव से सख्त भाव से उन्नत उज्जल गोपी भाव से बात्सल्य भाव से वो नहीं सेवा करते कृष्ण, इसलिए वे युगल की अनुरागमय सेवा नहीं करते, उनको जहाँ पर पूजन कहा गया है उनके प्रति ऐसा दृष्टि छोड़ करके श्रद्धा करनी चाहिए, मध्यम भागवत है। रामानुज को मध्वाचार्य को विष्णु स्वामी को सिद्ध भागवत कहा जाता है, वो सिद्ध ही है, इनमें से रामानुज सिद्ध होने पर भी वात्सल्य से करेंगे कृष्ण का, या उन्नत कुशल गोपी भाव से करेंगे, ना कभी वो नहीं कर सकते। इसलिए भागवत है सिद्ध होने पर भी जब तक शरीर है तब तक भागवत अभी परिकर तो हुए नहीं है। इसलिए शरीर है और उसमें सिद्ध है, ठीक है, किंतु अपने भाव में सिद्ध है, ब्रज के भाव से उनका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए उन लोगों को मध्यम भागवत से ही मानना पड़ा। ये तो
तो वो भी सिद्ध है और भगवान के परिकर भी है, जैसे रामानुजाचार्य हैं, लक्ष्मणी हैं। दूसरी बात जो सुजनगण है, जो
नाथ धर्म जय राधा कृष्ण प्रचुर पंचायत न करो प्रतिशुनो नंदी और प्रतिशतें गुरु कर मुकुंद पृष्ठे स्मर और मध्यस्थ प्यारे मन वेद शास्त्र इत्यादि श्रुतियों से जो धर्म और अधर्म कहे गए हैं, जो धर्म पुण्यमय या पापमय कुछ मत करो, बल्कि श्रुतियों ने चरम सिद्धांत के रूप में जिनको सर्व उपाधेय चरम उपास्य और सर्वपरि सत्व राधा कृष्ण जुगल की जो कहा है, उस राधा कृष्ण जुगल की प्रेममयी प्रचुर प्रत्यक्षा करो, सेवा करो। और सब श्रुतियों में जो कुछ कहे गए हैं धर्म अधर्म सब छोड़ो और राधा कृष्ण जुगल की अनुरागमयी सेवा करो। राधा भाव कांति दूध से बनकर सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु जी को नंदन से अभिन्न तथा गुरुदेव को मुकुंद का असंत प्रिय ज्ञान कर उनका स्मरण। अब इनका भजन दर्पण स्वीन ठाकुर के विचार। यहाँ पर तीन प्रश्न लिए गए हैं। पहले श्लोक में पूर्ण रूप से दंभ को छोड़कर कपटता इत्यादि को छोड़कर दंभ को छोड़कर युगल सरकार की युगल की जो थी अनन्य सेवा की जो बात कही गई है उसमें संख्याएं उठती हैं। यदि संपूर्ण रूप से दंभ छोड़ दिया जाए और अनन्य रूप से राधा कृष्ण का भजन किया जाए तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा? उसको कुछ कुछ ग्रहण किए बिना जीविका का निर्वाह नहीं होगा, निर्वाह नहीं होगा भजन के। तो ये जीवन का निर्वाह क्योंकि निश्चय नैमित्तिक कर्म को ही धर्म कहते हैं। नित्य और नैमित्तिक जो हमारे लिए कर्म है रूप धर्म, और कहीं कहीं अधर्म का आश्रय लिए बिना अधर्म का भी आश्रय लेना पड़ता है, इसके बिना जीवन का निर्वाह संभव नहीं। और दूसरी शंका है यदि राधा कृष्ण जुगल का आनंद भजन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को किस रूप में ग्रहण किया गया, क्योंकि महाप्रभु भी उपास्य के रूप में एक ही साथ में भजन करते हैं तो दो उपास्य हो जाते हैं, तो भजन आनंद नहीं रहा, कृष्ण का भी रहा और महाप्रभु का हुआ। और तीसरी शंका यह है गुरुदेव का स्मरण की भूमि कर उस लीला में जब हम स्मरण करते हैं अस्पताली लीला इत्यादि उस समय में गुरुदेव की भी भावना से किया गया, उनका समाधान कर रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। श्रुतियों में जो धर्म अधर्म कहा गया कुछ भी मत करो, राधा कृष्ण भी प्रचुर करते श्रुति और स्मृतियों इत्यादि ग्रंथ में धर्म और धर्म का निरूपण किया गया। मनुष्य जो कुछ भी करता है या तो कर्म या धर्म होगा। धर्म धर्म का यदि हम पूर्ण रूप से प्रत्याग कर दें, एक क्षण के लिए भी जीवित रहना मुश्किल है। अतः यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों का निषेध नहीं किया, सबका नहीं किया। जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अज्ञ और एक विज्ञ। एक मूर्ख नहीं जानने वाले अज्ञान और दूसरा जानने वाले। अज्ञ पुरुष शासन के बिना अनुशासन के बिना कोई भी काम नहीं करता, शास्त्र के शासन में किसी ने करता। और यदि करता है कुछ उनके अनुगत्य को छोड़ करके तो अमंगल हो जाता है। ऐसे ही अपने पुत्रों के कल्याण के लिए वेदों ने अर्थात अनुगामी शास्त्रों ने स्मृतियों ने धर्म और धर्म के कार्यों का विभाजन किया, उनको खास कर दिया, जिसे अशुभ कर्मों से दूर रहकर शुभ कर्मों में हम शास्त्रीय कर्मों में हम प्रवृत्त हो गए। दूसरे प्रकार के जो विज्ञ पुरुष हैं वे स्वरूप ज्ञान से संपन्न हो गए। ऐसे विज्ञ पुरुषों के लिए शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचन प्रयुक्त नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए तो केवल आत्मरति कृष्णरति जुगल परिचर्या का ही विचार है विज्ञ लोगों के। अब अपने लोगों के लिए वो और प्रकार है, इसलिए गोस्वामी चरण ने उनके लिए वेदोक्त कर्मों का त्याग नहीं करने के लिए समझ लें। ये लोगों के लिए नहीं है
और जनता
तो लोगों के लिए, अब ये लोगों के लिए मत करो। अब ये लोग वही सब करते हैं, मत करो। राजा कृष्ण जी के रूप पर क्या क्या ये बात, उसे तुम्हारा धर्म धर्म का जो पाप है वो भी दूर हो जाए। साधक जीवन में जो भी आवश्यक कार्य है भगवत सेवामयी भावना से करो। जो कुछ भी कर सवेरे से शाम तक बेटा निर्वाह इत्यादि के लिए जो कुछ कर्म करते हैं सब प्रणाशन कर्मनिष्ठ अवस्था में देश भी सारे कार्य भी भगवत सेवा की भावना से किए। गृहस्थ अपने घर में ठाकुर जी की सेवा रखेंगे, धन उपार्जन करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, विषयों की रक्षा करेंगे, गृह निर्माण इत्यादि सभी कार्यों का कार्यों को प्रभु का कार्य समझ कर अपने लिए मत करो, प्रभु के लिए करो। अपने को तो केवल प्रभु का एक सेवक मात्र समझो। भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे तक कीर्तन बदलाया। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में कहे गए श्राद्ध इत्यादि जो कार्य हैं वैष्णव के जो श्राद्ध हैं वो भी भगवत सेवा की भावना से करो। उसमें कृति के सहित मत करो, भगवत सेवा की भावना से। कहते हम अपने पितृ का श्राद्ध कर रहे हैं, पितृ का श्राद्ध माने क्या, भगवत निवेदित अन्न को उस परोक्त व्यक्ति को उनको भक्ति हो इस भावना से भगवान का निवेदित प्रसाद ही उनको लक्ष्य वैसा ही होना चाहिए। अधिकार संपन्न पुरुषों को और जो अधिकारियों को तो करेंगे उसे कोई मतलब नहीं होगा। गया में जाएंगे तो गदाधर कर्म का दर्शन कर लेंगे, शास्त्र कर्पण और इत्यादि से उनका कोई भी मतलब उनके लिए तो प्रभुता ब्रजवास और युगल की सेवा पर चर्चा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है। जिन लोगों को ब्रजवार ब्रजमंडल में रहना असंभव है वो मन के द्वारा करेंगे, फिर मन से करते 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 फिर दूसरे जन्म में ब्रज में ही जन्म हो जाएगा। इस तरह से उनका कल्याण संसार में अब नंदनंदन को सचिनंदन को नंदनंदन से अभी से समझना चाहिए। संसार में फंसे हुए विमुख जीवों को हरिनाम और अनर्थिक उन्नत उज्जवल प्रेम प्रदान करने के लिए नंद नंदन ही सखी नंदन के रूप में राधा भाव और शांति को लेकर के आए हुए। ऐसी दशा में कोई शंका कर सकते हैं कि मात्र राधा कृष्ण का मिलित विग्रह चैतन्य महाप्रभु की सेवा पूजा करने से ही हो जाएगा, मत करो राधा कृष्ण, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। तो केवल मात्र राधा कृष्ण मिलित विग्रह जो चैतन्य है, वो चैतन्य महाप्रभु का आरती करो, उन्हीं का भजन पूजन सागर जो कुछ करना है उन्हीं को करो, कृष्ण के सतयुगल को करने की जरूरत। अथवा राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को दोनों को अलग अलग सेवा को पूजा करनी है, क्या करना है, महाप्रभु की अलग से सेवा करें अथवा राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग से सेवा करें पूजा करें। इस शंका का समाधान करते हुए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्ति भाव से स्वयं कृष्ण भक्ति का आचरण करता है कि मैं जैसे भी हूँ राधा कृष्ण मेरी कर्म राधा कृष्ण ही हूँ, किंतु मैं उपदेश जैसा कर रहा हूँ और आचरण कर रहा हूँ वैसे करो, क्योंकि वो गुरु तत्व। इसलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु जब उपदेश दे रहे हैं जैसा, वैसा ही जुगल का भजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि कृष्ण कृष्ण नाम करो, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वैसा ही करो। वे ही गुरु रूप में आए जिन्हें उनका उपदेश पालन करें। जुगल सेवा करने से पहले गुरुदेव और गौरांग का अवश्य स्मरण करना चाहिए, ऐसा नहीं करने से परमात्मा की सिद्धि नहीं होगी। दूसरी बात एक और है, सचिनंदन गौरहरी की स्वतंत्र सेवा पूजा करने से स्वतंत्र रूप में यदि करो तो गौरचंदर और कृष्ण में अवश्य बुद्धि नहीं रहेगी, अभेद बुद्धि नहीं रहती, अभेद बुद्धि रहनी चाहिए। इसलिए उचित है चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, पूजन करो, आचरण करो और फिर वही उनकी भजन सिद्धि होने पर राधा कृष्ण में लग जाएगी। कपिल विनोद ठाकुर के अभेद बुद्धि होने से कृष्ण की सेवा पूजा में चैतन्य महाप्रभु की स्मृति बनी है। इसलिए करने जैसा जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जैसा रूप गोस्वामी ने कहा है, जैसा सनातन गोस्वामी ने आसन इत्यादि की व्यवस्था की है, जैसा गोपाल गुरु और ध्यानचंद जी की भी एक पद्धति है, इन पद्धतियों को लेकर के हमको भजन करना है। गुरुदेव को मुकुंद गुरुदेव और बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद के अत्यंत प्रिय पात्र, मेरा उद्धार करने के लिए कृष्ण ने अपने परिकर को नित्य परिकर को भेजा है, ऐसा समझो गुरुदेव को। गुरुदेव को श्रीमती राधिका की प्रिय समझ, प्रिय सखी समझना सर्वांग सुंदर है, सबसे अच्छा है। जब यद्यपि शास्त्रों में आचार्य माँ भी विजयानी है के अनुसार में गुरुदेव को भगवान का स्वरूप कहा गया है, हरिभक्ति को हरिभक्ति विलास आदि में भगवान का प्रिय अथवा भगवान के समान पर पूज्य बताया, भगवान के समान गुरुदेव को भी पूजा करती चाहिए, अन्यथा गुरुदेव को ही भगवान मानकर, गुरुदेव को ही भगवान मानकर भगवान की पूजा करने से, गुरुदेव की पूजा करने से अपराध होगा। गुरुदेव को भगवान मत समझो, भगवान का प्रिय समझो। साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्री रुक्त भाव्य किंतु प्रभोरियो प्रिय तस् इसलिए समझो गुरुदेव ही भगवान है, गुरु ही ब्रह्म है,
गुरु ब्रह्मा गुरु जी,
गुरु ब्रह्म है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही सब कुछ है। इसलिए गुरु जी की पूजा करो, जैसे आजकल गुरुदेव ही ब्रह्म का अपर नाम है,
परमात्मा का नाम है,
परमात्मा का नाम है। बहुत से ऐसे है गुरुदेव ही को अपना सब समझ लेते हैं, इसलिए अपराध हो जाएगा। प्रथमम गुरु गुरु पूज्य सतम से ही वो ममार्थ है। पूर्वन सिद्धि में आप लोग फलम पवे हरिभक्ति विलास है। पहले गुरु की पूजा करो और उसके बाद में मेरी पूजा करो, तब तो सिद्धि होगी और नहीं तो तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाए। कृष्ण कहते हैं कि पहले गुरु, इसके विपरीत जो दुर्बुद्धि कराए दाम्भिक व्यक्ति गुरुदेव को छोड़ करके भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुरुदेव को नहीं मानते, केवल भगवान की पूजा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते, गुरुदेव की ही पूजा करते हैं। दोनों नास्तिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह नराधम भगवान का वो भाजन हो जाता है, जैसे सूर्य जल संपर्क से युक्त कमल को विकसित कर देता है, और वही सूर्य जल से संपर्क न रहे तो कमल को जला देता है, सुखा देता है। नारायणों अपनी विक्रम जाति गुरु प्रसुद्ध चतुर्देव कमलम जलादेतम सूर्य अपनी रविंद्रो। इसलिए हमारे रघुनाथ दास जी के विचारों को हमें शिक्षा को लेकर के खजन में हम लोग आज सब गुण जो अपने पतियों के जतीशाला में ले जाती है उसको वहां न ले जा सके,
दर्शन
करेंगे। आज यही सब
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम ृंदारण्यवासीवासीन
बिंबकल की भांति रक्त वर्ण जो अधर युगल है वे परम मनोहर हैं। ऐसा जो आपका मुख कमल है वो मेरे हृदय में सर्वदा सदा सर्वदा प्रकाशित, मुझे लख लख दूसरे बड़ों से मुझे आवश्यकता है। विगत विग्रहों में भी विग्रह में भी श्री विग्रह में भी कृष्ण का मुखमंडल ही प्रधान है, वही हमारे हृदय में विशेष रूप से प्रस्फुटित हो अभिप्राय करते ईदन थे। कदाचित ध्यान योग में भी आपका यह मुख के मुख का अतुलनीय सौंदर्य हमारे हृदय में ध्यान योग में आपका मुखम भोज मुख रूपी जो कमल मुख ही पद्म है अर्थात प्रफुल्ल कमल खने निखिल संसार को दूर करने वाले और परमानंद रसमय है। यही मुख हमारे मन में ध्यान के द्वारा भी सदा सर्वदा पहुंचते वो किस प्रकार से मुखमंडल है परम श्यामक स्निग्ध लोहिता और कुटिल केश पाश के द्वारा अच्छा मानो भौरे मुख कमल है भौरे हैं जो उसका रसा स्वादन करना चाहते हैं। कमल जिस प्रकार से भ्रमरों के द्वारा परिवेशित होता है उसी प्रकार से केश समूह भी केश समूह के द्वारा मुख परिवेशित है। जो मुर्गा जी यहाँ पर नाम नहीं दिया गोप्या का गोप्या से यशोदा माँ के द्वारा तो सही है गोप्या के द्वारा राधा जी के द्वारा भी है इसलिए राधा जी के द्वारा मुख पुनः पुनः चुंबन वही कदम कमल महासौभाग्यवान शालिनी राधा जी यशोदा जी के द्वारा पुनः पुनः मैं चलता हूँ स्फूर्ति होने चुंबित होने पर भी मेरे मन में सदा प्रकटित अथवा पूर्व श्लोक में सदा श्लोक में भी सदा सर्वदा का व्यवहार होने से श्री मुख कमल की विशेष शोभा बतला रहे हैं। बिंब वक्त्राधरं बिंब फल उसका ऊपर का भाग बड़ा सुकोमल रहता है पकने के बाद और उसमें सिकुड़ने से उसमें क्या अधरों जैसी सिकुड़न उसमें हो जाती है रक्त वर्ण का होता है वही मुख मंडल हमारे हृदय में सुशोभित हो मैं लाखों लाखों और बच नहीं जाता। नमोदेव दामो धरानंद सविष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख ज्वाला ज्वाला दुखग्न कृपा दृष्टि विश्वति दीनम बदान देव आपको नमस्कार है। दामोदर हे विष्णु अचिंत महाशक्ति संपन्न हे अनंत हे सर्व मेरे ईश्वर विष्णु मैंने यहाँ तो मेरे ईश्वर हे हे प्रभो हे ईश आप मेरे प्रति प्रसन्न हो मुझसे बहुत संसार में दुख संसार दुख में निमग्न अत्यंत दीन भव्य व्यक्ति को उद्धार कर और कृपा दृष्टि वर्षण कर मेरे नैनों के सामने दृष्टि को यहाँ पर नैन का है अभी तक मन ही मन कर रहे मुझे संतुष्टि नहीं अब ये नहीं मान रहा। इस प्रकार की स्तुति के प्रभाव से उनके हृदय में ऐसा भाव आया कि मैं नैनों के तरह इस बाल गोपाल रूप को मैं देखूं। इसके लिए उपाय क्या है? नाम संकीर्तन। इन्हें नाम संकीर्तन के द्वारा ही मैं इनकी प्रार्थना करूं तो ये मेरी प्रार्थना थी। ऐसा स्थिर करके नाम संकीर्तन करने लगे। प्रातः भाव के साथ में प्रार्थना करें नमः। मूल श्लोक में तुभ्यम पद यहाँ जो करो तुभ्यम नमः, आपके लिए नमस्कार है, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। वे भाव भय गौरव प्रेम विकलता प्रयुक्त है, प्रेम के उद्रेक विशेषता साक्षात्कार तुभ्यम नहीं कह पाते। इस कारण से भय से प्रेम के उद्रेक से तुभ्यम छूट गया, अब तुम्हारे ही चरणों में प्रेम प्रणाम कर रहे हैं। हे प्रभु मदीय ईश्वर, प्रभु मैंने मदीय तुमको नमस्कार है, तुम प्रसन्न हो क्यों? दुख के दुख जाला निमग्न, दुख के जाल में मैं निमग्न हूं। दुख क्या है?
आपका दर्शन नहीं मिल रहा है,
यही दुख है। और वो कहता है महाचार या जल अवधि, जल के समुद्र अथा जल के समुद्र के समान है। जन मरण संसारिक दुख अथवा तुम्हारा अदर्शन जनित दुख वो समुद्र तुल है। मैं अपने कर्म बस उसमें निमग्न हूँ, इस दुखों के उत्पूर्णों को मैं ऐसा नहीं पाता, अतः आप हमारे प्रति प्रसन्न। अभी दीनम इस शब्द का दूसरा भी अर्थ हो सकता है, मैं साधु संग से विहीन हूं। ये बहुत प्रधान है। सब दुख एक तरफ और साधु संग रहित होना एक तरफ का। सब दुख रहने पर भी साधु का संग हो तो कल्याण हो जाता है, किंतु सब सुख रहने पर भी साधुओं का संग न रहे जो हमको शासन कर सके, हमारे लिए निर्देश कर सके साधन, ये सबसे बड़ा है। सहाय के बिना साधु संग के बिना असहाय हूं, साधन वजन भी मेरा कुछ नहीं है। जब विचार किया जाए तो देखा जाए तो साधन भजन भी हमारा क्या है? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से तुलना करो, क्या साधन? कुछ नहीं, खाते पीते आराम से मौज करते। रघुनाथ दास गोस्वामी एक चुल्लू मट्ठा नशा कठोर भजन करते थे, हम लोग का कठोर भजन कुछ नहीं, इसलिए भी दुखी है। हम लोगों के लिए कह रहे हैं, मैं जीता का भी मरा के समान हूं, आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हूं। और मैं बहुत कुछ बोल गया पहला श्लोक के
पहले जो मंदिर में दर्शन करने की हम यात्रा कर रहे हैं, अब उनके हृदय में भावना है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आखिर की साल दो साल परम सुख दुर्लभ रूप को मैं अपने आंखों से देखूं। इस प्रार्थना के द्वारा ये निवेदन किया जा रहा है कि साल दो साल को सुंदर यशोदा मैया और राधिका के द्वारा क्यों ली जो बाल गोपाल रूप है पर दुर्लभ है,
इसलिए पहले ही उन्होंने ये बार मैं नहीं मांगा, क्रमशः बढ़ते गए। इसलिए कह रहे हैं पहले महिमन में दर्शन करने के लिए मांगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 आप कह रहे हैं कि नहीं प्रभु आप हमारे आंखों के सामने दृष्टि हो रहे हैं। मन की अपेक्षा आंखों से दर्शन करना बृहद भगवतामृत का वैशिष्ट्य होता है। महिमन में दर्शन होने से बातचीत होना असंभव है, उनको प्यार करना असंभव है, उनका चुंबन करना असंभव है। इसलिए बृहद भागवत में ये बताया गया, हमने पहले इसका पाठ किया और सनातन गोस्वामी सिर्फ दूसरा अर्थ कर रहे हैं। पहले तो बताया कि कनाक्षा भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, जैसे ऋषियों ने भी पाया था। सभी लोग की कनाक्षा भक्ति के द्वारा ही पाते हैं, इसलिए कनाक्षा भक्ति प्रकाशक इत्यादि संबोधन जो किए हैं उसका दूसरा अर्थ निकला है। देव मैंने दिव्य रूप परम सुंदर उसको दर्शन करने की इच्छा है। दामोदर, दामोदर माने दाम में पद है, भक्त बात करके गुण सूचित होता है, तो हमारे भक्ति कभी वशीभूत हो सके आप।